श्रीमद्भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय पर आज चर्चा होगी, तो इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे। ब्रह्मोवाच वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नाम् जिह्वा सर्वरसस्य च वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतानन्नां जिह्वा सर्वरसस्य च वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यमृतान्नां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, वाचां वाणी का, बहिर् अग्नि का, मुखम मुख क्षेत्रम जनन केंद्र, छंदसाम वैदिक मंत्रों का यथा गायत्री का, सप्त सात धातवः त्वचा तथा अन्य छे स्तर, हव्य कव्य देवताओं तथा पितरों को दी गई भेंट, अमृत मनुष्यों का भोजन, अन्नानाम सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का, जिह्वा जीभ सर्व समस्त रसस्य समस्त व्यंजनों का, च भी अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य छह स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य छह स्तर गायत्री जैसे सात प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र हैं। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। क्योंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूँकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव ये समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से ये बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब हैं। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत की किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहाँ वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कामों दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवद्गीता में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोऽस्फुरा।
हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में नारद मुनि के प्रश्न हुए इस भौतिक प्रकृति के विषय में और फिर उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने। अब इस अध्याय में भी उनके उत्तर जारी हैं जो पिछले अध्याय से उन्होंने प्रारंभ किए। भगवान की इस भौतिक सृष्टि का वर्णन, विराट रूप का वर्णन प्रारंभ किया और अब इस अध्याय के प्रारंभ में करीब 17 श्लोकों तक ब्रह्मा जी इस बात को स्थापित करते हैं कि कैसे जो भौतिक चीज़ें भी हैं वो भी भगवान से आती हैं। आपके जो गुण हैं, आपकी जो कला है, आपकी बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, आपका शुभत्व, जो भी आप कहिए इस जगत में, वो सब भगवान के विराट रूप से आता है। तो जैसे इस श्लोक में हमने पढ़ा, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सब कुछ भगवान से आ रहा। तो करीब 17 श्लोकों तक ब्रह्मा जी यही वर्णन करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है इस वर्णन का? इस वर्णन का उद्देश्य ये है कि ये जान लेना कि हम भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान से स्वतंत्र होकर हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं भगवान से स्वतंत्र होकर जी सकता हूँ, भगवान को बिना माने, भगवान की बिना पूजा किए, भगवान की सेवा किए मैं जी सकता हूँ, तो वो मोह में है। क्यों मोह में है? क्योंकि वो जो ले रहा है, वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है, वो भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा दिया गया है। जैसे श्लोक में बता रहे हैं कि वाचा, जो बोलने की शक्ति है, वो भगवान है। अब अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि वो जो बोल रहा है, जो बोलने की बड़ी उसकी शक्ति आ रही है, जैसे यहाँ पर कहा है कि वाचा बहिर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम, जो भी चीज़ें हैं, चाहे मंत्र हैं इत्यादि, ये भगवान के द्वारा दिए गए। हमारी बोलने की शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है, तो व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होगा। व्यक्ति अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं मानेगा भगवान से, क्योंकि जहां हम भगवान से स्वतंत्र हो गए, सारी शक्तियां चली गईं। हमारी बोलने की शक्ति, हमारे कार्य करने की शक्ति, 17 श्लोकों में सब यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप जो शक्ति मान लीजिए, सब कुछ भगवान से आ रहा है। जिन चीजों को हम इस जगत में शुभ मानते हैं, वो भी भगवान से आ रहे हैं। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो भगवान से नहीं आ रही, तो फिर हम भगवान से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि बता रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान से आ रही हैं। हमें बड़ा गर्व होता है अपनी इंद्रियों पर, अपनी शक्ति पर, अपनी कला पर, वो भी भगवान से आ रहा है। अगर भगवान नहीं दे तो हम बोल नहीं पाए, भगवान नहीं दे तो हम कोई कार्य नहीं कर पाए, बुद्धि नहीं चला पाए। तो ये पहला जो विभाग है, वैसे इस अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। पुरुष सूक्त इसलिए कि ब्रह्मा जी अब वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वैसे ये जो पुरुष सूक्त हैं ये ऋग्वेद में दिए गए हैं, लेकिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्तों से इस अध्याय का सीधा संबंध स्थापित हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी, क्योंकि ब्रह्मा जी अब गुणगान मंत्रों के द्वारा कर रहे हैं जैसा वैदिक मंत्रों में किया गया है, इसीलिए पुरुष सूक्त की पुष्टि कही गई है। वैसे पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं ये ऋग्वेद में हैं। ये वो प्रार्थनाएं हैं जब देवता इत्यादि भगवान को प्रसन्न करने जाते हैं और फिर पुरुष सूक्त दोहराते हैं। तो इन प्रार्थनाओं के द्वारा ब्रह्मा जी ये बतला रहे हैं कि कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए जीव को अहंकार नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान से विलग होकर अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे इस भौतिक जगत में भी। आध्यात्मिक जगत की तो बात छोड़ दीजिए, इस भौतिक जगत में भी अगर कोई सोचता है कि मैं भगवान से अलग रहकर सुखी रह सकता हूं, जीवित रह सकता हूं, तो वो मोह में है। ये ब्रह्मा जी समझा रहे। तो ऐसे उन्होंने करीब बहुत सारे चीजों का वर्णन करते हुए फिर वो कहते हैं 18वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक कि ये मत सोचना कि केवल भौतिक जगत में भगवान अपने आप को इस विराट रूप में प्रकट कर लेते हैं और इस भौतिक जगत के स्वामी हैं। नहीं, वो कहते हैं ये तो केवल एक पाद विभूति है, इसके परे त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति मतलब अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये तो 25% है, इसके परे 75% आध्यात्मिक जगत है। तो इसका वर्णन वो कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये जो तुम देख रहे हो, ये सारे ब्रह्मांड, ये महाविष्णु, ये गर्भोदक्षायी विष्णु, ये इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड, ये केवल 25% है। एक पाद विभूति कहते हैं इस जगत को, और त्रिपाद अर्थात 75% आध्यात्मिक जगत है। तो 18 से लेकर 22वें श्लोक तक वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना करते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है और भौतिक जगत। अर्थात पहले वो उन्होंने बताया कि भौतिक जगत भी केवल भगवान का ही रूप है, लेकिन उद्देश्य इस जगत में रहना नहीं है। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात इन श्लोकों में अब कहते हैं 18 से 22वें श्लोक में कि इस जगत में रहना ये उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति इस जगत में बने रहने के लिए प्रयास करता, बचपन से हम पढ़ाई करते हैं किस लिए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब किस लिए, धन कमा लें, धन किस लिए, परिवार को सुखी रख सकें, बस। तो यही उद्देश्य अर्थात इस जगत में कैसे हम सुखी बने रहें, इसलिए व्यक्ति सारे कार्य करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मूर्खता है। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें कार्य करने चाहिए इस जगत के परे जाने के लिए, इस जगत में बने रहने के लिए नहीं। तो वो कहते हैं कि इस जगत के परे और एक जगत है जहां जन्म मृत्यु नहीं है। इस जगत में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई जन्म मृत्यु नहीं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कोई भय भी नहीं है, अमृतम क्षेमम अभयम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो। अमृतम कोई मृत्यु नहीं है, क्षेमम सब कुछ ठीक है वहां, अभयम कोई भय नहीं है। ये जगत भय का जगत है, हर समय व्यक्ति यहां भयभीत रहता है। आप अपना जीवन देखिए, आज तक का जीवन, क्या हम भयभीत नहीं है, हर क्षण भयभीत है व्यक्ति। किसी को धन चले जाने का भय है, किसी को जॉब चले जाने का भय है, किसी को परिवार के लोग चले जाने का भय है, किसी को अपना मान सम्मान चले जाने का भय है, किसी को मृत्यु का भय है, ये तो सबको है। तो बहुत सारे भय हैं, ये पूरा जगत ये भय से भरा हुआ है। आप सोचिए क्या आपके जीवन में कभी आपने ऐसा जीवन जिया जहां कोई भय नहीं था, निर्भय। कोई व्यक्ति कह सकता है मेरे को जीवन में भय नहीं है, मृत्यु का भय है, घबराता है इसीलिए सारी सिक्योरिटी करके रखता है। हम लोग सड़क पर चलते हैं, भय होता है कहीं गाड़ी आकर मार नहीं दे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बीच सड़क पर चलना चाहिए और कोई पूछे तो कहे कि प्रभु जी ने कहा निर्भय रहो, गाड़ी आकर मार दे तो भी कोई चिंता नहीं। भय से भरा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक जगत निर्भय, वहां कोई भय नहीं है, वहां जीव इस भय में नहीं रहता। और वहां जाने की योग्यता क्या है, बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी इस अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे है और उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहां बारंबार जन्म है, शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वो कहते हैं कौन से संसार में आपने फेंक दिया है हे मुरारी हे कृष्ण, बारंबार जन्म, बारंबार मां का गर्भ, और कितना कष्ट है गर्भ में। बालक गर्भ में रहता है क्या करता है, कोई अगर यहां पर डॉक्टर हैं तो वो जानते हैं, जब मां के गर्भ में बालक होता है तो जहां रहता है वहीं उसको सारा मूत्र त्यागता रहता है, उसी को पीता रहता है,
बहुत कष्टमय जीवन, गंदगी में रहता है 8-9 महीने कष्ट। श्रीमद् भागवतम में अभी हम लोग तीसरे स्कंद में जाएंगे तो वहां वर्णन है कि एक बालक को गर्भ में क्या क्या कष्ट होते हैं। अपने 100 जन्मों के पापों को याद करता है वो। आप सोचिए, हम लोग तो केवल इसी जन्म के पाप को याद करके घबरा जाते हैं कि कितने सारे पाप हम लोग कर चुके हैं। जब 100 जन्मों के पाप याद आते होंगे तो कितना घबरा जाता होगा वो बालक गर्भ में, प्रार्थना करता है भगवान से, तो ये सब आएगा। तो वहां कोई जन्म नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग, अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कौन आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचार्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें तीनों लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तो ब्रह्मा जी ने योग्यता दे दी कि अगर इस जगत के परे जाना है तो जहां है उस स्थान में रहकर धर्म का पालन सीखें, गृहस्थ जीवन में बहुत आसक्त ना हो और ब्रह्मचारी जीवन का कठोरता से पालन करें। एक गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं गृहस्थ जीवन से आसक्त नहीं होना और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना। इसका अर्थ क्या है? जो ब्रह्मचारी हैं वे कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो सकते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो अनासक्त रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें तब वे भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हैं। तो गृहस्थ जीवन में कैसे ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है, श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा किसी ने, तो प्रभुपाद ने कहा स्त्रियों और पुरुषों के विषय में, तो प्रभुपाद ने कहा कि सारी स्त्रियों को विवाह करना चाहिए और सारे पुरुषों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अब सारे ब्रह्मचारी होंगे तो विवाह कौन करेगा स्त्रियों से? तो उनका कहने का अर्थ ये था कि जो लोग ब्रह्मचारी रह सके अपने जीवन में वो तो बड़े भाग्यवान हैं, उनको तो रहना ही चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है पारिवारिक जीवन की। लेकिन जो लोग विवाह करते हैं उन्हें विवाहित जीवन में भी अनासक्त रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात पुरुष और स्त्री को एक साथ केवल संतान उत्पत्ति के लिए आना चाहिए और उसके बाद पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है पूर्ण रूप से अनासक्त रहकर, और यही ब्रह्मा जी यहां बता रहे हैं। आध्यात्मिक जगत जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो ब्रह्मा जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जब तक व्यक्ति आसक्त रहेगा पारिवारिक जीवन में कोई चांस नहीं है, बार बार उसी में घूमेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु तक वही याद आएगा, हाय मेरे परिवार का क्या होगा, फिर आगे मेरे जाने के बाद मैं जा रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चे ठीक से रहेंगे नहीं रहेंगे, झगड़ा करेंगे, क्या होगा, बस यही सब चलता रहेगा और मृत्यु आ जाएगी। इसलिए व्यक्ति को सही समय परिवार से अनासक्त हो जाना चाहिए अगर पारिवारिक जीवन में है। तो नियम क्या है? वैदिक नियम, एक बालक 5 साल की आयु से 25 साल की आयु तक गुरुकुल में रहे, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करे, फिर उस उम्र में वो निर्णय करे कि क्या वो गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहता है या सीधे संन्यास के लिए। अगर गृहस्थ जीवन स्वीकार करे तो 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक केवल गृहस्थ जीवन का पालन करे और उसके बाद वानप्रस्थ, निश्चित वानप्रस्थ लेना चाहिए। आज की स्थिति में कैसे वानप्रस्थ ले सकते हैं? प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में, अपनी शिक्षाओं में सब लिख कर गए। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई वानप्रस्थ लेना चाहता है तो शुरुआत में उसको अपने घर से 1-2 महीने के लिए दूर कहीं जाना चाहिए, वृंदावन, मायापुर इत्यादि जाएं, फिर वापस आ जाएं, क्योंकि एकदम अनासक्त नहीं हो सकते, एकदम घर नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए 1-2 महीने के लिए जाएं, फिर वापस आएं, कुछ समय घर में रहें, फिर 1-2 महीने के लिए चले जाएं, ताकि घर से अनासक्ति बढ़ जाए, घर में रहने की आसक्ति इच्छा नहीं हो, और फिर जब थोड़ा समय ऐसे बीत जाए तो पूर्ण रूप से घर से बाहर जाएं और ऐसे ही रहें, संन्यास की तैयारी करें। तो 50 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ और आगे चलकर संन्यास लेना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा हृदय में अनासक्ति आती है। जितना हम आसक्त रहते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, ये सोचकर कि यही तो मेरा कर्तव्य है, भागवत की क्लास में जो प्रभु जी बताते हैं वो भागवत के लिए ठीक है, क्लास के बाहर आकर भूल जाना चाहिए, क्लास के बाहर परिवार है, समाज है, नहीं, जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारना चाहिए। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, यहां समझा रहे हैं कि जब तक गृहस्थ जीवन में आसक्त रहेंगे भगवान के धाम जाने की बात भूल जाइए। और ब्रह्मचारियों को कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या केवल ब्रह्मचारी रहकर कोई भगवान के धाम जा सकता है? नहीं, कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की भक्ति, सर्वोपाधेर विनिर्मुक्तम, अपनी इंद्रियों को, सारी उपाधियों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमें उपाधियों से आसक्ति नहीं है कि मैं बहुत श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ सन्यासी हूं, ये उपाधि है। ब्रह्मचारी ये उपाधि है, सन्यासी उपाधि है, गृहस्थ उपाधि है, वानप्रस्थ उपाधि है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र उपाधि है। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, भक्ति क्या है? इन उपाधियों के परे जाना, तत्परत्वेन निर्मलम, भगवान की भक्ति में लगना। तो अर्थात हमें आसक्त नहीं होना है केवल ब्रह्मचारी संन्यास इत्यादि से, हमें आसक्त होना है कृष्ण से। ये तो सारी शरीर की उपाधियां हैं, आत्मा की एक ही उपाधि है वैष्णव। वैष्णव ये आत्मा की उपाधि है और हमें उस उपाधि को प्राप्त करना है। जब हम शरीर की उपाधियों को त्यागेंगे, मुक्ति को क्या कहा गया है, मुक्ति की परिभाषा, मुक्तिर हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कि हित्व अन्यथा रूपम, जो अन्य रूप, जो अन्य उपाधि हमने ले रखी है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, हित्वन्यथा रूपम, ये अन्य रूप धारण किए हैं। स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण र दास, जीवे र स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। तो आत्मा की उपाधि को स्वीकार करना, शरीर की उपाधियों को त्यागना, ये सही दृष्टि में मुक्ति है। मुक्तिर हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो स्वरूप में स्थित होना मतलब, जैसे यहां ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि इसको त्यागना, इन आसक्तियों को त्यागना और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना। तो करीब 22वें श्लोक तक ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि कैसे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है। भौतिक जगत में हम कृष्ण को भूल जाते हैं अज्ञान के द्वारा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई कृष्ण को नहीं भूलता। हर समय हर क्षण वे कृष्ण का स्मरण करते हैं। हम सोचिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, किसी ना किसी तरह कृष्ण का स्मरण हो सके, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वाभाविक है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपना ध्यान पिक्चरों से नहीं हटाना पड़ेगा, परिवार से हटाना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविकता कृष्ण का स्मरण होगा। ये आध्यात्मिक जगत, कोई भूलता नहीं है कृष्ण को वहां पर, भूल गए वो तो हम हैं जो यहां पर पड़े हुए हैं इस भौतिक जगत में। तो ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी 23वें श्लोक से वर्णन करते हैं, अपना खुद का वर्णन करते हुए, कि ये जो सारा भौतिक जगत है ये केवल भगवान से ही आया है, इसको एक प्रमाण देने के लिए अपना उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी। तो करीब 23वें श्लोक से 30वें श्लोक तक वो वर्णन करते हैं कि मेरा जब जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी खुद बताते, देखिए भागवत में हम देख रहे हैं कई स्थानों पर गुरु जो होते हैं ज्ञान देने के लिए खुद अपना उदाहरण देते हैं, कि मेरा खुद का उदाहरण, नारद मुनि ने दिया, पहले हमने देखा है पिछले स्कंद में 4th-5th अध्याय में नारद मुनि ने खुद अपना उदाहरण दिया, व्यास देव को, सुखदेव गोस्वामी ने दिया अपना उदाहरण परीक्षित महाराज को, तो यहां ब्रह्मा जी भी दे रहे हैं अपना खुद का उदाहरण कि मेरा जब जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ मेरा, मेरे तो कोई माता पिता नहीं थे, ब्रह्मा जी तो, ब्रह्मा जी का एक नाम है पद्मजा, पद्मजा मतलब जो कमल के फूल पर जिनका जन्म हो गया है। तो अज भी कहते हैं, अज यानी उनका भौतिक जन्म नहीं हुआ क्योंकि भगवान से सीधे प्रकट हुए, तो पद्मजा। वैसे ही जो कल्प है इसको पद्मजा कल्प भी कहा जाता है। कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं, और हरेक कल्प को एक नाम दिया जाता है। 30 कल्प होते हैं ब्रह्मा जी के एक महीने में, तो हरेक कल्प को एक नाम दिया जाता है। उस कल्प में जो सबसे पहला अवतार होता है भगवान का, उसके नाम पर कल्प का नाम दिया जाता है। जैसे इस कल्प में श्वेत वराह ये पहला अवतार हुआ था, इसीलिए इस कल्प को श्वेत वराह कल्प भी कहते हैं, या पद्मजा। पद्मजा मतलब ब्रह्मा जी का आज के दिवस पर जन्म हुआ था, आज बर्थडे है ब्रह्मा जी का, तो इसीलिए पद्मजा कल्प भी कहा जाता है। तो श्वेत वराह कल्प आप देखते हैं, कभी कभी कोई पंडित वो यज्ञ इत्यादि कराते हैं तो वो बोलते बोलते श्वेत वराह कल्पे, श्वेत वराह कल्प में, और ऐसे सभी स्थान में इत्यादि बोलते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी बताने लगे कि मेरा जन्म हुआ कैसे, गर्भोदक्षाय विष्णु से कमल निकला और कमल से मेरा जन्म हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था कैसे करना, कोई मेरे पास सुविधा नहीं थी यज्ञ करने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तो यज्ञ करना था मुझे, ब्रह्मा जी पहले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का कार्य है यज्ञ करना, तो यज्ञ करना था लेकिन कोई सुविधा नहीं थी। तो वो ब्रह्मा जी बताते हैं इन श्लोकों में कि यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए, अग्नि चाहिए, घी चाहिए, पंडित पुजारी चाहिए, यज्ञ स्थली चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। कुछ भी नहीं था, मैं अकेला था, लेकिन ये सारी चीजें मैंने भगवान के विराट रूप, केवल भगवान के अंग थे, अलग अलग अंग, और उन अंगों से मैंने ये चीजें प्राप्त की। तो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि तुम ये बात नहीं मान रहे हो कि ये सब भगवान से आता है, तो मैं खुद बताता कि मैं जब था कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ये सारी चीजें भगवान के अंगों से प्राप्त की हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड का प्रारंभ किया, सबसे पहला यज्ञ किया, वो खुद बता रहे हैं कि ये सारी चीजें मैंने भगवान के अंगों से प्राप्त की हैं। तो फिर से उस बात को वो बताना चाहते हैं कि किस तरह इस भौतिक सृष्टि के भी उद्गम भगवान ही हैं, सब कुछ भगवान से आता है। तो ये सारे अध्याय में ब्रह्मा जी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि सब कुछ भगवान से आता है, हमें अंततः भगवान की सेवा ही करनी है। और फिर ब्रह्मा जी जब इस अपने उदाहरण को दे चुके कि मैंने ये सब किया, तो फिर नारद मुनि के जो प्रश्न थे उनके प्रश्नों को सार के रूप में फिर से वो उत्तर देते हैं। जैसे आपको याद है पिछले अध्याय में नारद मुनि ने प्रश्न किए, यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यच्च इत्यादि, ये सब पूछे कि कौन है यद संस्थम, तो उन सारे प्रश्नों का सार वो देते हैं कि सब कुछ भगवान हैं। पहले भी उन्होंने बताया वासुदेव ही सब कुछ हैं, नारायण परादेवा, नारायण परामखा इत्यादि, और अब उसको सार के रूप में श्लोक नंबर 31 से 33 तक दो तीन श्लोकों में वो सार दे देते हैं कि सब कुछ भगवान ही हैं। और फिर प्रश्न ये आता है कि नारद मुनि के मन में बात, मान लीजिए प्रश्न करे कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं, ब्रह्मा जी की, आप कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान हैं, तो आपकी बात सही है या नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 34वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक कि क्यों तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो वो कहते हैं, पहला कारण देते हैं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान हैं, मैं भगवान को सदैव अपने हृदय में धारण करता हूँ, और क्योंकि मैं भगवान को सदैव हृदय में धारण करता हूँ, मेरे हृदय से केवल शुद्ध या सत्य ही निकल सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। भक्तों का क्या महत्व है? भक्तों का महत्व ये है कि कृष्ण उनके हृदय में है, धर्म के तत्व उनके हृदय में है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः सपन्था। धर्म के तत्व उनके हृदय में हैं, कृष्ण उनके हृदय में हैं। कृष्ण स्वयं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वहां नहीं रहता। नारद मुनि को कहते हैं, पुराणों में वर्णन आता है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयशुवा, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं ना योगियों के हृदय में रहता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरे भक्त जहां मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जहां मेरे भक्त रहते हैं मैं वहां रहता हूं, उनके हृदय में मैं रहता हूं। योगियों के नहीं, योगी तो ढूंढते रहते हैं हृदय में मुझे, मैं मिलता नहीं उन्हें, ना ही वैकुंठ में रहता हूं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। तो भगवान रहते हैं, भगवान को सबसे प्रिय स्थान है भक्तों का हृदय। तो नारद मुनि को यही समझा रहे हैं ब्रह्मा जी कि मेरी बात क्यों तुम्हें माननी चाहिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, वो शुद्ध है, क्योंकि भगवान हृदय में है। शुद्ध हृदय से निकली हुई बात, शुद्ध हृदय से निकले हुए वचन हमें शुद्ध कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, हमें जानना चाहिए। इसीलिए प्रामाणिक गुरु से सुनना बहुत आवश्यक है। जैसे श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद के मुख से निकले हुए वचन जो उनके ग्रंथों के रूप में आज भी हैं, जब प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे उस समय जब प्रभुपाद बोलते थे, तो कितने सारे लोगों ने उनको समर्पण किया, कितने सारे लोग भगवान के भक्त बने। कारण था, हृदय में श्री कृष्ण थे। तो शुद्ध हृदय है तो शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन व्यक्ति को शुद्ध कर सकता। तो ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में, दो कारण ब्रह्मा जी ने दिए इन श्लोकों में कि क्यों तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पहला, मैं श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखता हूं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे सुनना चाहिए, किसकी बात को सत्य मानना चाहिए, जिसके हृदय में कृष्ण है, अर्थात जो भक्त है भगवान का, उससे सुनना चाहिए। अन्यों से सुनकर कोई लाभ नहीं होगा, अन्यों से सुनकर केवल मनोरंजन होगा। कई लोग हैं जो भागवत कथाएं करते हैं केवल मनोरंजन, वो तो इन सब पे चर्चा भी नहीं करते। उनका चर्चा होता है रासलीला, क्योंकि लोगों को सबसे आकर्षित करती है रासलीला। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कृष्ण ने की, हम भी जाकर कर सकते हैं, हम कोई कृष्ण से कम हैं, चलो कृष्ण ने 16108 के साथ किया, हम कोई 10-12 के साथ कर लें इत्यादि, तो इसलिए पसंद है। या फिर अन्य कोई लीलाएं, राधा रानी के साथ क्या लीला की। शुद्ध हृदय क्या करता है? प्रभुपाद जी, हमें ध्यान है कि बहुत सालों पहले हमें पहली बार राधा अष्टमी पर प्रवचन देना था। राधा अष्टमी का उत्सव था और पहली बार, कई साल पहले की बात है, तो हम राधाष्टमी पे, तो हमने सोचा कि राधाष्टमी पे क्या कहें, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसी को देख लेते हैं क्योंकि परंपरा है, जो प्रभुपाद ने कहा हमें दोहराना है। तो हमने सोचा प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं राधाष्टमी पे, तो हम उनको देख लेते हैं क्या प्रभुपाद कहते हैं वही। तो हम सोच रहे थे कि एक हमने प्रवचन देखा कि वृंदावन में प्रवचन राधाष्टमी पर श्रील प्रभुपाद जी का, तो हमने सोचा सबसे बढ़िया है क्योंकि प्रभुपाद तो लीलाएं कहेंगे, राधा रानी कैसे कृष्ण के साथ गई, क्या हुआ, ये सब वृंदावन में और क्या होगा। तो हमने उस प्रवचन को पढ़ा और पूरा प्रवचन पढ़ रहे थे कि कब श्रील प्रभुपाद प्रारंभ करेंगे। प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं, आज राधाष्टमी का दिवस है, वृंदावन धाम इत्यादि, और उसके बाद प्रभुपाद चालू करते हैं कि हम लोग आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, पूरा प्रवचन उसके ऊपर, राधा अष्टमी का दिन, वृंदावन धाम, और प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं आत्मा शरीर और ये सारा वर्णन हम पढ़ रहे थे। अब शुरू होंगी लीलाएं, अब शुरू होंगी लीलाएं, अब शुरू होंगी। अंत में प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति इसको समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, वो सही दृष्टि में श्रीमती राधा रानी को समझ सकता है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। अरे क्या हुआ, लीलाएं कहां गई? तो ये शुद्ध हृदय है, क्योंकि कौन राधा रानी का वर्णन कर सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी रास लीला का वर्णन कीजिए, हम लोग सुनना चाहते। प्रभुपाद ने कहा आप लोग योग्य हो सकते हैं रासलीला सुनने के लिए, मैं रासलीला बोलने के लिए योग्य नहीं हूं। इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रभुपाद योग्य नहीं है, प्रभुपाद उल्टा कहना चाहते थे, लेकिन सीधा कहना जरा बुरा लगता है ना कि आप लोग योग्य नहीं हो सुनने के लिए, मैं बोल सकता हूं लेकिन आपकी योग्यता नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने उल्टा कहा कि आप लोग योग्य हैं सुनने के लिए, मैं बोलने के लिए योग्य नहीं हूं। तो इसीलिए जो लोग प्रमाणिक नहीं है, जो हृदय में कृष्ण को नहीं रखते हैं, वो इन लीलाओं में आनंद देते हैं लोगों को, मनोरंजन केवल। वो बात नहीं करते हैं आत्मा की, वो बात नहीं करते हैं सृष्टि की रचना की। प्रभुपाद कहते थे जिस रुचि से हमें रास लीला का वर्णन सुनना है, उसी रुचि से सृष्टि लीला का वर्णन सुनना है, उसी रुचि से भगवान के, भगवान ने जो युद्ध कराया उसको सुनना, महाभारत को सुनना, भगवद गीता को सुनना, क्योंकि वो भी कृष्ण की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला, ये रास लीला से अलग नहीं है, उसको सुनना है। संकीर्तन लीला ये रास लीला चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के साथ की गई, उसको सुनना है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते। तो दो उन्होंने गुण कहे कि क्यों आपको मेरी बात माननी चाहिए। पहला, क्योंकि मैं भगवान को अपने हृदय में रखता हूं, इसलिए जो भी मैं कह रहा हूं। तो ब्रह्मा जी अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, भगवान श्रेष्ठ हैं, और क्योंकि भगवान मेरे हृदय में है इसीलिए मैं जो कह रहा हूं वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वो बात को दोहरा रहा हूं जो भगवान कह रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि हालांकि भगवान को जानना असंभव है, नारद, मैं, तुम, शिव, कोई भगवान के गुणों को नहीं जान सकते, फिर बाकी देवताओं को तो भूल जाओ, बहुत स्पष्ट कहते हैं। यहां देखिए हम लोग सोचते हैं हम भगवान को पूर्णता जान लेंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं जान सकता, तुम नहीं जान सकते, शिव जी नहीं जान सकते, फिर बाकी देवताओं को तो भूल जाओ कि वो क्या जानेंगे। तो भगवान के गुणों को जानना असंभव है, अनंत है, उनके गुण अनंत है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी योग्यता के अनुसार सदैव उनका गुणगान करता रहता हूं, इसलिए मेरी बात को मानना चाहिए। अर्थात दो गुण बताते हैं, एक उस व्यक्ति से सुनिए जिसके हृदय में कृष्ण हो, अर्थात जो भक्ति का पालन दृढ़ता से करता हो, दिखावा नहीं करता हो। जैसे कई लोग भागवत कथा करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवद गीता पर चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते गला सूख जाता है तो बोलते थोड़ा बीड़ी लेकर आओ, जरा गला सूख गया है, और फिर बीड़ी पीकर फिर बोलने लगे। ऐसे लोगों से नहीं सुनना है हमें, ऐसे लोगों से कोई लाभ नहीं है सुनकर। तो ऐसे लोग जो हृदय में भगवान को रखते हैं और सतत भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सुनना है। तो ब्रह्मा जी ये बात बता रहे हैं कि क्यों मुझसे तुम्हें सुनना चाहिए, जो मैं अब कह रहा हूं उसको क्यों सत्य मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो जान भी नहीं सकता कि भगवान के क्या गुण है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना पता है उतनी शक्ति से मैं भगवान का गुणगान करता हूं। तो भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं प्रचारकों के लिए, हम सब भक्तों के लिए, कि हमें जितना पता है हमें उतना बताना चाहिए भगवान के बारे में, वही पूर्णता है। हम हमेशा पूर्ण भगवान के बारे में नहीं जान सकते, कभी नहीं होगा। ब्रह्मा जी किसी के साथ नहीं होता तो हमारे साथ क्या होगा। तो कभी अवस्था नहीं आएगी जब भगवान को पूर्ण जान जाएंगे। भगवान स्वयं नहीं जानते अपने आप को पूर्ण, क्योंकि उनके गुण बढ़ते रहते हर क्षण, ये आनंद बढ़ता रहता, आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम। इसीलिए हमारे लिए क्या मार्ग है, जितनी हमारी योग्यता है, जितनी क्षमता, जितना हम जानते हैं, बिना कल्पना किए जो हमने आचार्यों से सुना है, भक्तों से सुना है, उसको दोहरा है, ये परंपरा है। तो इसके द्वारा हम जो कहेंगे वो सही होगा। तो ऐसे 38वें श्लोक तक ब्रह्मा जी ये वर्णन करते हैं। और फिर अब उन्होंने वर्णन कर दिया कि गुणगान करना चाहिए, तो अचानक उनके मन में आया कि हाँ अब गुणगान करना चाहिए, तो अब वो गुणगान करने लगे। तो आगे के श्लोकों में भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की लीलाओं को सुनने से हृदय शुद्ध होता है। पहले स्कंद में भी हम ये सुन चुके हैं, शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की आप अवतारों का वर्णन कीजिए, आप सब बताइए हम शुद्ध हो जाएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुनना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते बोलते इतने भाव विभोर हो गए कि वर्णन कर रहे थे सृष्टि का, लेकिन उन्होंने अब सृष्टि का तो है, ये भी सृष्टि का वर्णन है, लेकिन उन्होंने अब वर्णन शुरू कर दिया भगवान के अवतारों का। सृष्टि का वर्णन कर चुके, उन्होंने कह दिया नारद जो तुमने पूछा था मैंने तुमको उत्तर दे दिया, और फिर मुझे क्यों तुम्हें मानना चाहिए ये बताया। लेकिन जैसे ही बताया तो उन्होंने कहा कि मैं गुणगान करता हूँ सतत भगवान का, और फिर उनके हृदय में आया कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे गुणगान भी तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने भगवान के अवतारों का वर्णन प्रारंभ किया, और उसमें उन्होंने महाविष्णु कारणोदक्षायी विष्णु का वर्णन किया कि विष्णु ये जो हैं ये भगवान के अंश हैं। बहुत स्पष्ट कहते हैं ब्रह्मा जी, अभी तक वो ब्रह्मा जी उन्हीं महाविष्णु को सब कुछ कह रहे हैं, उन्हीं का रूप है, वही परिवर्तित होते हैं गर्भोदक्षायी विष्णु में, वही परिवर्तित होते हैं विराट रूप में, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो अंश हैं भगवान के, कृष्ण के। तो यहाँ स्पष्ट है कि विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं। इसका वर्णन आगे के स्कंद में भी होगा, जब हम लोग तीसरे स्कंद में जाएंगे तो उसमें विस्तार से होगा, अभी केवल संक्षेप में उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने कहा कि उनके अंश हैं महाविष्णु या कारणोदक्षायी विष्णु, जो कारण सागर में करते हैं, और वही सब चीज़ों के इस भौतिक जगत में स्रोत हैं, और हम भी। फिर उन्होंने सब अपना वर्णन किया, अपना नाम लिया, देवताओं का नाम लिया, ब्रह्मा जी का नाम लिया, शिव जी का नाम लिया, नारद का नाम लिया, जितने भी नाम हैं सबका नाम ले लिया, कि सारे नाम जो मैं बता रहा हूँ, सारे लोग हैं और अन्य ऐसे जो भी चीज़ें जो एक शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, जैसे ब्रह्मा जी में एक विशेष शक्ति है, नारद में विशेष शक्ति है, शिव जी में विशेष शक्ति है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सारे लोग जो एक विशेष शक्ति को प्रकट करते हैं ये भगवान का अंश मात्र हैं। अर्थात एक दृष्टि से कहना चाहिए उन्होंने शक्तावेश अवतारों का वर्णन कर दिया। शक्तावेश अवतार क्या होते हैं? भगवान के अवतारों में कई श्रेणियां होती हैं। अगले अध्याय में ब्रह्मा जी लीला अवतारों का वर्णन करेंगे, लेकिन इधर वर्णन उन्होंने किया अपना नाम लेकर नारद का, शिव, ये शक्त्यावेश अवतारों का। शक्त्यावेश मतलब भगवान किसी जीव को या फिर विष्णु तत्व को शक्ति प्रदान करते हैं, और वो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। जैसे परशुराम जी, परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। इसीलिए एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि अरे रामचंद्र जी से परशुराम जी हार कैसे गए, परशुराम जी तो पहले आए थे, वो बड़े भगवान हैं, सीनियर भगवान हैं, है ना, और रामचंद्र जी बाद में आए, वो जूनियर भगवान हैं, तो वो कैसे हार गए? तो प्रश्न जूनियर सीनियर का नहीं है, प्रश्न तत्व का है, क्योंकि परशुराम जी जीव हैं, वो विष्णु नहीं है, और परशुराम जी को शक्ति प्रदान की थी भगवान ने, इसीलिए वो शक्त्यावेश अवतार कहलाए। अवतार हैं भगवान के, लेकिन शक्त्यावेश अवतार हैं, और इसीलिए रामायण में वर्णन है कि जब हो गया भगवान ने उनकी शक्ति वापस ले ली उस तीर से जो उन्होंने चढ़ाया था। और रामचंद्र जी वो विष्णु हैं, इसलिए विष्णु से जीव हारे हैं, विष्णु से विष्णु नहीं हारे हैं। तो खैर इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी ने सब वर्णन कर दिया और फिर महाविष्णु का वर्णन किया, और अब वो कहने लगे कि अब मैं वर्णन करूंगा भगवान के लीला अवतारों का। भगवान इस जगत में आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। तो फिर अब अगला अध्याय भगवान के लीला अवतारों का है, कई अवतारों का वर्णन करेंगे लाइन से ब्रह्मा जी। पूरे अध्याय में प्रायः भगवान के अवतारों का वर्णन है, इसीलिए उस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो कल हम लोग अलग अलग अवतार, बहुत सारे अवतार हैं, हम लोग सारे की तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, संक्षेप में कुछ अवतारों का वर्णन कल करेंगे।